रूपाली जी ने अगले ही दिन से मेड को घर के सब काम करने के लिए कह दिया था। वक्त लगा था, पर रसोई भी उन्होंने अपने तरह से सेट कर लिया था। सुबह शाम खाना बनाना उनके लिए एक बहुत बड़ी आफत थी, उस पर सबकी अलग अलग पसंद का ख्याल रखना और भी मुश्किल था। मेड की मदद से जैसे तैसे उन्होंने कुछ दिन गुजार ही लिए थे। आहाना लौट आई थी और सबकी जिंदगियां एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगी थीं। जैसा कि अन्वय ने वादा किया था, अंतरा से बात रोज करता और वक्त निकालकर एक दो दिन के लिए उसके पास चला भी जाता था। देखते ही देखते अंतरा का नौवां महीना चढ़ गया था और उसने जिद पकड़ ली थी कि दिल्ली आएगी। वहां उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया था और सब उसे एक महीने और वहीं रुकने को कह रहे थे, पर वो नहीं मानी। उसके दिल्ली आते ही आहाना की चिंता और जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। उसने अक्षय से कहकर आधे दिन के लिए केयरटेकर रख ली थी, जो आहाना के लौटने तक अंतरा का ख्याल रखती और उसके बाद तो आहाना उसके पास होती। अन्वय और आहाना समेत घर में सभी एक्स्ट्रा अलर्ट थे और अंतरा का ख्याल रखने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते थे। ये एक महीना भी पलक झपकते ही बीत गया और वो दिन भी आ गया जिसका सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। शाम को अंतरा को अचानक लेबर पेन शुरू हुआ। आहाना ने एम्बुलेंस को फोन किया और आनन फानन में उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचाया गया। अन्वय को खबर मिली तो शोरूम बंद करके वो हड़बड़ी में अभिजीत जी संग हॉस्पिटल पहुंचा। अक्षय नहीं आ सका था, आहाना के साथ रूपाली जी भी थीं अस्पताल में। सबका दिल घबराहट के मारे जोरों से धड़क रहा था और दिल एक ही दुआ कर रहा था कि सब ठीक से हो जाए, अंतरा और उसका बच्चा सलामत रहे। बेचारे अन्वय को तो एक घड़ी चैन नहीं आया था और आहाना का भी यही हाल था। लेबर रूम में अंतरा दर्द से चीख रही थी और बाहर खड़े लोगों का दिल घबरा रहा था। खैर, ये मुश्किल घड़ी भी बीत गई। अंतरा की डिलीवरी हो चुकी थी और जब डॉक्टर ने बेटे होने की खबर दी तो रूपाली जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सबको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था बच्चे को देखने का। कुछ देर बाद सब उस वार्ड के बाहर खड़े थे जिसमें अंतरा और उसका बच्चा था। नर्स के कहने पर सब साथ ही अंदर आए। अंतरा हॉस्पिटल बेड पर आंखें मूंद लेटी थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। इस असहनीय दर्द को सहने के बाद अब उसमें जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। उसके बगल में छोटा सा गोल मटोल सांवला बच्चा लेटा था। रंग उसका अंतरा पर गया था। अन्वय ने जब दूर से ही उन्हें देखा तो उसके लबों पर कातिलाना मुस्कान सज गई और आंखें नम हो गईं। सबसे पहले बच्चे को उसी ने लिया। कुछ पल बड़े ही प्यार से अपने बच्चे को देखता रहा, फिर उसके सर को चूम लिया। अपने बच्चे के बाद उसने नजरें अंतरा की ओर घुमाई और अपनी हथेली से प्यार से उसके सर को सहलाने लगा। जाने पहचाने स्पर्श को महसूस करते हुए अंतरा ने अपनी आंखें खोली। निगाहें अन्वय की निगाहों से टकराईं और दोनों के लब मुस्कुरा उठे। बहुत दर्द सहकर तुमने मुझे ये खुशी दी है, जिसके लिए मैं उम्र भर तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। थैंक यू सो मच। आज जिंदगी में पहली बार अपनी खुशी जाहिर करने के लिए शब्द नहीं मेरे पास। अन्वय भावुक था और अंतरा महसूस कर पा रही थी उसकी खुशी को, उसकी भावनाओं को, जिन्हें वो शब्दों में बयां करने में असमर्थ था। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे, पर अपने पोते को गोद लेने को उतावली रूपाली जी बीच में टपक पड़ी। हो गया तुम्हारा, अब बातें बाद में आराम से करते रहना, पहले जरा हमें हमारे पोते को देखने दो। अन्वय के बाद रूपाली जी ने उसे अपनी गोद में लेकर खूब प्यार किया। अभिजीत जी ने भी अपने पोते को लिया। सबसे आखिर में आहाना, जो अब तक अंतरा के पास खड़ी उसके सर पर हाथ फेरते हुए सबके खुशी से खिले चेहरों को देख रही थी, आगे बढ़कर उसने अभिजीत जी से बच्चे को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि रूपाली जी ने कठोर स्वर में उसे टोक दिया। तुम कहाँ जा रही हो? आहाना समेत बाकी सब लोग सवाइया निगाहों से उन्हें देखने लगे। आहाना भी उनकी सख्ती की वजह न समझ सकी और आंखों की पुतलियां फैलाएं असमंजस भरी निगाहों से उन्हें देखने लगी। हम बच्चे को लेने जा रही हैं। जैसे ही उसने ये जवाब दिया, एक बार फिर रूपाली जी की नफरत भरी भारी आवाज वहां गूंज उठी। कोई जरूरत नहीं तुम्हें उसके पास जाने की, खुद तो हमें वारिस दे नहीं सकी। इतनी मन्नतें मांगने पर भगवान ने सालों के इंतजार के बाद हमें एक पोता दिया भी तो अपनी मनहूस छाया उस पर डालना चाहती हो। अपने बच्चे को तो बचा नहीं सकी, अब हमारे पोते को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हो। खुद तो हमें ये खुशी दे नहीं सकी और अब सालों बाद हमारे घर में कोई खुशी आई भी तो उस पर ग्रहण लगाना चाहती हो, पर तुम जैसी बांझ औरत की परछाई भी हम हमारे पोते पर नहीं पड़ने देंगे। एक बार फिर शब्दों के रूप में उन्होंने अपने मन का जहर उगला था। वहां मौजूद सभी लोग उनकी बातें सुनकर शॉक्ड रह गए थे। बीते एक महीने रूपाली जी शांत थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके मन में इतना जहर भरा होगा। आज उन्होंने आहाना को उसकी ही बहन के बच्चे को छूने से रोक दिया था और ऐसी बातें सुनाई कि आहाना की उन बड़ी बड़ी आंखों में आंसू और दर्द का सैलाब उमड़ आया। रूपाली जी ने निर्दयता दिखाते हुए क्रूरता से उसके वीक पॉइंट पर वार किया था। अहाना समेत बाकी सब अचंभित से उन्हें देखते ही रह गए। पर अंतरा से अपनी बहन का ये अपमान, उसका दर्द और आंसू बर्दाश्त नहीं हुए और उस कमरे में उसके गुस्से से कांपती आवाज गूंज उठी। मेरी जीजी का पूरा हक है मेरे बच्चे पर। आपको कोई अधिकार नहीं उनसे मेरे बच्चे को छूने का, हक छीनने का। जिस बच्चे से आप उन्हें दूर रखना चाहती हैं, उस बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाने में सबसे बड़ा हाथ मेरी जीजी का है। बहुत पोता पोती का रट्टा लगा रही हैं आप, पर मेरी प्रेगनेंसी के दौरान आपने एक पानी का ग्लास तक नहीं दिया था मुझे। आपको दादी कहलाने का ही कोई हक नहीं। अगर कोई है जिसे उससे दूर रहना चाहिए तो वो आप हैं, क्योंकि जीजी के साथ तो वो सुरक्षित है, पर आप जैसी जहरीली घटिया मानसिकता वाली औरत से बहुत खतरा है उसे। मैंने पहले भी कहा था और आज आखिरी बार कह रही हूँ, बांझ नहीं है मेरी जीजी। अगर तब आपने उनसे दुश्मनी नहीं निकाली होती तो आज उनका बच्चा जिंदा होता। उनकी आज जो हालत है उसकी जिम्मेदार आप हैं, इसलिए खबरदार जो दोबारा मेरी जीजी के बारे में अपनी घटिया जुबान से कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे बड़ी हैं और रिश्ते में मेरे पति की माँ हैं। गुस्से में आज अंतरा वो बात कह गई थी जिसे मन में होने के बावजूद वो आज तक कभी जुबान पर नहीं लाई थी, और उसका इल्जाम सुनते ही रूपाली जी गुस्से से तिलमिला उठी थी। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं, यही सच है जिसे सब जानकर भी अनदेखा करते आ रहे हैं। मेरी जीजी को 8वां महीना चल रहा था। माँ ने कहा था कि उन्हें घर भेज दें, हम ध्यान रखते उनका, पर आपको परेशानी थी। उस वक्त आपकी लापरवाही के कारण जीजी के साथ वो हादसा हुआ और उन्होंने उस हादसे में अपने बच्चे को खो दिया। उस वक्त जब उन्हें देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत थी, कोई नहीं था उनके पास। आप उन्हें अकेला छोड़कर गई थी और आपकी लापरवाही की कीमत उन्होंने अपने बच्चे को खोकर चुकाई थी। सिर्फ आपके कारण उन्होंने अपना बच्चा खोया, वही बच्चा जिसके लिए 8 महीने तपस्या की थी उन्होंने, और सारा दोष भी आपने उनके सर पर डाल दिया। आज तक बात बात पर आप उन्हें बांझ होने का ताना मारती हैं, उन पर इल्जाम लगाती हैं कि वो अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकी, जबकि जो हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप थी। अंतरा का कमजोर शरीर गुस्से से कांप रहा था, सांसें चढ़ने लगी थी, पर आज वो रुकने वाली नहीं थी। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और नफरत भरी निगाहों से उन्हें घूरते हुए एक बार फिर गरज उठी।
हमारी माँ कहती है कि अगर बहू बहू ना बनकर बेटी बन जाए तो सास भी माँ बन जाती है, पर नहीं, ये बात सच नहीं। मेरी जीजी ने आपको वही इज्जत, वही सम्मान और अपने दिल में वही जगह दी जो वो हमारी माँ को देती हैं, पर अफसोस कि आप कभी एक लम्हे के लिए भी उन्हें अपनी बेटी ना समझ सकीं। प्यार तो दूर, आप उन्हें वो मान और दिल में वो जगह तक ना दे सकीं जो आपकी बहू होने के नाते उन्हें मिलना चाहिए था। फलक दीदी जब माँ बनने वाली थीं, आपने उन्हें यहाँ बुला लिया था। क्यों? क्योंकि मायके में ध्यान बेहतर तरीके से रखा जाता है। पर जब मेरी दीदी माँ बनने वाली थीं तो आपने उन्हें नहीं जाने दिया, और हमने भेजने की बात कही तो यहाँ भी ध्यान रखा जाएगा कहकर बात टाल दी। सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर वो चली जाती तो सब काम आपको करने पड़ते। आपने कहा था माँ से कि यहाँ भी उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, और उसके बाद हम सब ने देखा कि कितना ख्याल रखा गया था यहाँ उनका। इतना ख्याल रखा कि 8 महीने कड़ी तपस्या करने के बाद, इतना दर्द और मुश्किलें सहने के बाद भी उन्हें अपने बच्चे को देखना तक नसीब नहीं हुआ, और तब भी सारा दोष उन पर डाला गया। क्यों? वो कोशिशें करती रहीं कि आपको खुश रख सकें, संतुष्ट कर सकें, पर जाने आप उनसे किस बात की नफ़रत पाले बैठी हैं कि आपको ना उनकी कोशिशें दिखीं, ना अच्छाई दिखी और ना ही दर्द नज़र आया। आप पहले दिन से लेकर आज तक बस उन्हें तकलीफ़ पहुँचाने की, दर्द देने की और उनकी मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश करती आ रही हैं, और आज आपने अपनी सारी हदें पार कर दी। मैं बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ, पर अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझिए। अगर अब आपने मेरी जीजी के खिलाफ एक भी गलत शब्द कहा, उन्हें अपनी घटिया बातों या हरकतों से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी की, तो अपने जिस पोते को पाकर आज आप इतना खुश हैं उसे लेकर मैं हमेशा हमेशा के लिए सहगल निवास से चली जाऊंगी और कभी आपको उसका चेहरा भी नहीं देखने दूंगी। गुस्से से अंतरा की आंखें खूनी रंग में रंग गई थीं, उसकी सांसें फूलने लगी थीं, खुद पर से आपा खोने लगी थी वो। ये देखकर अन्वय ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। अंतरा रिलैक्स, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम शांत हो जाओ, अभी डिलीवरी हुई है तुम्हारी, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, प्लीज़ शांत हो जाओ। अन्वय, उनसे कहो ये यहाँ से चली जाएं, तुमने देखा ना उन्होंने जीजी को कितनी घटिया बातें कहीं, इन्होंने जीजी को हमारे बेटे को छूने भी नहीं दिया। इन्हें कहो ये चली जाएं यहाँ से, मैं इन्हें यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इन्हें कहो ये यहाँ से चली जाएं। अंतरा रोते हुए बदहवासी उससे रूपाली जी की शिकायत कर रही थी। इतने में शोर सुनकर नर्स वहां चली आई और अन्वय को छोड़कर बाकी सबको वार्ड से बाहर निकाल दिया। शोर सुनकर उसका बेटा भी रोने लगा था। अन्वय ने अंतरा को संभाला और उसने अपने बेटे को चुप करवाया। कुछ देर बाद अन्वय बाहर गया, पर वहां रूपाली जी और अभिजीत जी के सिवा और कोई नहीं था। अंतरा अहाना को बुला रही थी, पर किसी को खबर ही नहीं कि अहाना कहाँ गई। अन्वय ने उसे फोन भी लगाया पर उसका फोन बंद आ रहा था, जिससे वो कुछ परेशान हो गया। कमिंग सून, कहाँ गई अहाना? अब रूपाली जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आगे के भाग बड़े मजेदार होने वाले हैं, तो यूं ही मेरे साथ बने रहिए।